हरे कृष्ण। आपका दूसरा प्रश्न कि कृष्ण ने कहा कि मेरा ये ज्ञान केवल भक्तों को ही सुनाना, पर श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने इस ज्ञान का प्रचार वेस्ट में जाकर किया, जो कि भक्त तो थे नहीं बल्कि पूरी तरह से माया में डूबे हुए थे। तो क्या श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण की अवज्ञा की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में झांकना पड़ेगा। देखो, कृष्ण के उपदेश और श्रील प्रभुपाद जी के प्रचार के बीच में बहुत कुछ घटनाएं घटी हैं। इन पर विचार किए बगैर हम सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। कृष्ण ने जब भगवद गीता का उपदेश दे दिया ना, तो सिर्फ एक जगह पर ही नहीं, कई जगहों पर अभक्तों को धुतकारा है। अगर 18.66 को देखें, तो बोले सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासुच। मतलब अगर तुम्हें पापों से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरी शरण में आना पड़ेगा। मगर पहले तो ये बोला ना 7.28 में, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्तो भजन्ते मां दृढव्रता। यानी मेरी शरण में या मेरी भक्ति में आने की शर्त ये है कि पहले तुम्हें समस्त पापों से मुक्त हो जाना पड़ेगा। हैरत है, पहले बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओगे तो पापों से मुक्त करूंगा, और दूसरी जगह पे बोल रहे हैं कि मेरी शरण में तभी आ सकते हो जब पापों से मुक्त हो जाओगे। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? या तो पहले पापों से मुक्त कर दो फिर शरण में आऊंगा, या तो पहले शरण में आने के लिए बोलो फिर पापों से, तो मैं कैसे आऊं जब मैं पवित्र होऊंगा ही नहीं, तो मैं कैसे आऊं? इसी चीज को इसके अलावा 7.14 में ये भी कहा कि देखो, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। देखो यहाँ भी दो बातें हैं कि वैसे तो मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है, इसको पार कोई कर ही नहीं सकता, और खुद माया से परे बैठकर बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं माया से तुमको पार कर दूंगा। अरे तुम तो खुद माया से पार हो, मैं तो माया में गिरा हूं, मैं आऊं कैसे शरण में? मैं तो खुद पति तू, मैं कैसे आऊं तुम्हारे पास? कुछ समझ में आ रहा है ना? चलो देखो, मैं आपको एक दृष्टांत देती हूँ, इससे मैं प्रयास करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये द्वंद्व क्या है, ये दो दो चीजें क्या मैं बताना चाह रही हूँ। दो बच्चे थे, 5 साल के छोटे बच्चे थे, तो दोनों की आपस में बहुत ज्यादा मित्रता हो गई। काल कर्म के अनुसार समय बीतता गया और उनमें से एक अच्छी संगति के कारण पुलिस वाला बन गया, और जो दूसरा मित्र था वो बुरी संगत की वजह से चोर बन गया। और एक दिन उस चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, तब उसे पता चला कि जो उसका बचपन का मित्र था ना, वो भी पुलिस वाला है, करीबी किसी शहर में उसकी ड्यूटी है। तो उसने बहुत आग्रह किया और एक पत्र लिखा उस मित्र के नाम कि आप कृपा करके मुझे इस जेल से बाहर निकालो। जब ये पत्र उस दोस्त को दिया गया, तो पुलिस वाले जो दोस्त ने भी इसके उत्तर में भी एक लेटर लिखा, और उस पत्र में लिखा कि ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करा दूंगा, मगर इसके लिए पहले तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। अब आप ही बताओ, वो बेचारा तो कैद में पड़ा हुआ है, वो तो जेल में कैसे जाएगा? अगर मुक्ति दिलानी ही है तो उससे आना पड़ेगा ना छुड़ाने के लिए, जो पुलिस वाला है, जेल से बाहर है, जो कैद है वो कैसे जाएगा? बिल्कुल ऐसी ही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कही है कि मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें माया से पार कर लूंगा। अरे भाई, मैं तो कैद हूं, तुम आके मेरा हाथ पकड़ो, माया से हटाओ तो मैं तुम्हारे पास आऊं। अब जिस श्लोक पे हम बात कर रहे हैं, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, कि कृष्ण के दो ये मुख्य गुण है, एक तो वो रसिक शेखर है और दूसरे परम करुण है। भक्तों पर कृपा की वर्षा करते हुए पहले सवाल के उत्तर में कृष्ण ने अपने रसिक शेखर होने का तो प्रमाण दे ही दिया, मगर यहाँ उनका परम करुणामय भाव तो प्रकट हो ही नहीं पाया। अब देखो क्या क्या किया उन्होंने भगवत गीता में, बोले 9.3 अशुद्ध दानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है वो तो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े ही रहेंगे। इसी तरह पहले बोला 7.25 में, नाहं प्रकाशः सर्वत्र योग माया समावृता मूढोऽयं न विजानाति लोको माम अजमव्ययम्। मैं कभी भी मूढ़ हूँ और मूर्खों के समक्ष प्रकट नहीं होता हूँ, और योग माया द्वारा ढका रहता हूँ। और 16.20 में बोला आसुरिम योनि मापन्न मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्त है वकौनते तत्व यांत्य अधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो मूढ़ है वो तो बारंबार आसुर योनियों में ही जन्म लेते हैं और कभी भी मुझ तक पहुंचते ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। मेरा वजूद लरस गया जब मैंने ये श्लोक पढ़े, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। और सबसे बढ़कर जब 18.67 में बड़े गुरूर से कहा कृष्ण ने, इदम तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशु शुषवे वाचम न च माम योभ्य सूयते। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी न एक निष्ठ भक्ति में रत और ना ही ऐसे हो जो मुझसे द्वेष करते हो। अब तो कोई चारा ही नहीं रह गया हम जैसे पतित आत्माओं की मुक्ति का, क्योंकि अगर इन श्लोकों को थोड़ा से भी गौर से आप लोग देखोगे ना, तो हम बिल्कुल योग्य ही नहीं है इस परम पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने के। फिर तो कभी मुक्ति का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर फिर कृष्ण का परम करुणामय स्वभाव प्रकाशित हुआ और कृष्ण को ये रियलाइज हुआ कि मेरे इन आदेशों के अनुसार तो कलयुग के पतित लोग कभी भी मुझ तक आ ही नहीं पाएंगे। तब कृष्ण एक और रूप में प्रकट हुए जिसे महावदन्याय कहा जाता है। याद रखिए, महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं है, बल्कि वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही है। और उन्होंने आकर एक दूसरा आदेश दिया, बोले जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश, कृष्ण उपदेश का मतलब है जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता। याद रखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना कोई शास्त्र नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें पता था कि मेरा शास्त्र तो पहले से ही है, सिर्फ अपना आदेश चेंज किया। बोले पहले तो मेरी दूसरी आज्ञा थी, पर अब मैं ही दूसरी आज्ञा दे रहा हूँ। क्या देखो, जो एक आदेश दे सकता है वो इस आदेश को बदल भी सकता है। अथॉरिटी जिसके पास है वो अपनी मर्जी से आदेश दे सकता है, आदेश को चेंज कर सकता है। और बोले जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हंजा तारा ऐ देश। यानी उठो, जो भी दिखे, चाहे वो जो भी हो, भक्त हो अभक्त हो, पापी हो अपराधी हो कामी हो, मतलब कितना ही गिरा हुआ पतित क्यों ना हो, जाओ उसे कृष्ण का उपदेश दो। ये थी भगवान की दूसरी आज्ञा। अब भगवान ने तो दूसरा आदेश दे दिया, मगर इस आदेश को पूरा करने के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि ये साधारण आदेश नहीं था, तो इसको पूरा करने वाला भी कोई साधारण कैसे हो सकता था। फिर भगवान ने अपना एक शक्ति आवेश अवतार प्रकट किया, परम पूज्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के रूप में वो शक्ति आवेश अवतार जो थे वो प्रकट हुए। और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को कि क्या होती है करुणा, कैसे उत्पन्न करनी है, भक्ति कैसे बढ़ानी है, श्रद्धा कैसे बढ़ानी है। महाप्रभु परम करुणामयी है, उनका अवतार हम जैसे पतितों को पावन करने के लिए ही हुआ है, और शीला प्रभुपाद जी तो महाप्रभु की इस भविष्यवाणी को साकार करने के लिए ही भौतिक जगत में आए थे, क्योंकि वैष्णव तो पर दुख दुखी होते हैं। सोचने से भी डर लगता है कि यदि महाप्रभु ना होते तो हमारा क्या होता, यदि श्रील प्रभुपाद ना आए होते तो हम अब तक न जाने किस गंदगी में गिरे होते। शास्त्र पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, हमें ये भी पता नहीं होता कि शास्त्र आखिर कहते किसे हैं। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।